स्मार्टफोन के युग ने निजता में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के कुछ बड़े बदलाव लाए हैं। नकारात्मक पक्ष ये है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल उन कंपनियों द्वारा जासूसी उपकरणों के रूप में किया जा सकता है जो उन्हें नियंत्रित करती हैं, या फिर उन्हें हैक करने में सक्षम खतरा पैदा करने वाले लोग। आप माइक्रोफोन के जरिए फोन के मालिक की बात सुन सकते हैं, आधुनिक हैंडसेट में लगे कई कैमरों के जरिए उन्हें देख सकते हैं और GPS के जरिए उनके स्थान को ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह की ट्रैकिंग विशेष रूप से घातक है क्योंकि कानून प्रवर्तन जैसे समूहों को ये जानने के लिए आपके फोन को हैक करने की जरूरत नहीं है कि आप किस समय कहाँ थे। वे उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए बस गूगल या जिस भी मानचित्र प्रदाता का आप उपयोग कर रहे थे उसे समन भेज सकते हैं। लेकिन सकारात्मक पक्ष ये है कि आधुनिक क्रिप्टोग्राफी ने हमें ऐसे ताले दिए हैं जिन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकारें भी नहीं तोड़ सकती हैं। क्रिप्टोग्राफी से पहले की स्थिति पर विचार करें। अगर पुलिस आपके घर या व्यवसाय की तलाशी लेने के लिए वारंट प्राप्त करने में कामयाब हो जाती है और आपके पास गुप्त दस्तावेज या कोई अन्य जानकारी है जिसे आप नहीं चाहते कि कानून प्रवर्तन को मिले, तो आपकी एकमात्र उम्मीद उन दस्तावेजों को कहीं छिपाना या उन्हें किसी विश्वसनीय तीसरे पक्ष को देना होगा जो उन्हें घोड़े पर सवार होकर शहर से बाहर ले जा सके और उम्मीद करे कि पुलिस उन्हें न पा सके। या अगर आप बाद में दस्तावेजों को फिर से बना सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप उन्हें जला सकते हैं और फिर बाद में जब आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी तो उन्हें फिर से बना सकते हैं। हमने बार बार देखा है कि पुलिस ने आतंकवादियों और अन्य अपराधियों के स्मार्टफोन प्राप्त किए हैं और या तो विशुद्ध संयोग से या अपराधी को उनके डिवाइस के बारे में ज्यादातर लोगों से ज्यादा जानकारी है। पुलिस हिरासत में आने से पहले ही फोन लॉक हो जाता है और यह उनके लिए विशेष रूप से बुरा है अगर संदिग्ध की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि तब कानून प्रवर्तन किसी भी यातना का उपयोग नहीं कर सकता है। मेरा मतलब है कि डिवाइस का पासकोड प्राप्त करने के लिए उन्नत पूछताछ तकनीक। इससे कानून प्रवर्तन के पास कुंजी के लिए निर्माता से संपर्क करने का अंतिम विकल्प रह जाता है और इसने एप्पल और कानून प्रवर्तन के बीच बहुत तनाव पैदा कर दिया है, क्योंकि iOS चलाने वाले फोन आमतौर पर अधिक सुरक्षित होते हैं और क्योंकि iOS एक मालिकाना सॉफ्टवेयर है और एंड्रॉइड इकोसिस्टम की तरह अलग अलग कंपनियां फोन नहीं बनाती हैं, इसलिए आपको लगता होगा कि एप्पल के पास इन फोन को जादुई तरीके से अनलॉक करने की कोई कुंजी हो सकती है। लेकिन एप्पल इस बात पर जोर देता रहता है कि उनके पास ऐसा नहीं है। अब भले ही एप्पल के पास आईफोन को अनलॉक करने के लिए कोई जादुई कुंजी न हो, फिर भी ऐसे तरीके हैं जिनसे कानून लागू करने वाली कंपनियां उन फोन से डेटा प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन उनकी सफलता डिवाइस की लॉक स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करती है। जब किसी फोन को रीसेट या रीबूट किया जाता है तो ये पहले अनलॉक या BFU स्थिति में होता है। BFU स्थिति में फाइल सिस्टम एनक्रिप्ट किया जाता है और कैमरा बटन, लॉक स्क्रीन, विजेट और वाईफाई सुविधाएं तब तक अक्षम रहती हैं जब तक कि उपयोगकर्ता द्वारा सेट किए गए पासकोड के साथ फोन अनलॉक न हो जाए। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब कोई डिवाइस BFU मोड में होती है तो फेस ID और फिंगरप्रिंट रीडर जैसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अक्षम हो जाते हैं। इसलिए ऐसे मामले में जहां संदिग्ध की मृत्यु हो चुकी है और उसे अपना पासकोड देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, उस फोन पर मौजूद सबूत कभी भी उससे निकाले नहीं जा सकते हैं। हालांकि अफू में या पहले अनलॉक की स्थिति के बाद बायोमेट्रिक्स अभी भी काम करते हैं, इसलिए पुलिस आसानी से संदिग्ध को इस तरह से अपना फोन अनलॉक करने के लिए मजबूर कर सकती है, और ये तब भी काम कर सकता है जब वे मर चुके हों या वे सेलेब्राइट जैसे मालिकाना क्रैकिंग टूल का उपयोग करके फोन से डेटा निकाल सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में फाइल सिस्टम पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड नहीं होता है। अगर पुलिस किसी संदिग्ध के फोन को बंद करने से पहले उसे पाने में भाग्यशाली होती है तो वे आमतौर पर डिवाइस से चार्जर कनेक्ट करके फोन को सुरक्षित स्थिति में रख देते हैं ताकि बैटरी खत्म होने के कारण फोन बंद न हो जाए, और वे आमतौर पर डिवाइस को एयरप्लेन मोड में डाल देते हैं ताकि ऐसे मामलों में जहां संदिग्ध को फोन जब्ती के साथ गिरफ्तार नहीं किया जाता है, वे किसी अन्य डिवाइस से संदेश हटाने या अपने फोन को दूर से मिटाने या बंद करने के लिए कमांड भेजने में सक्षम न हो। लेकिन iOS के एक हालिया अपडेट के कारण अफू डिवाइस जो कथित रूप से सुरक्षित पुलिस हिरासत में है, उन्हें BFU मोड में तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो इस मामले के संबंध में कानून प्रवर्तन और फोरेंसिक विशेषज्ञों के बीच घूम रहा है। इस नोटिस का उद्देश्य आईफोन से जुड़ी एक स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाना है जो आईफोन उपकरणों को कम समय में रीबूट करने का कारण बन रहा है। सेलुलर नेटवर्क से हटाए जाने के 24 घंटे के भीतर अवलोकन संभवतः होते हैं। यदि आईफोन पहले अनलॉक के बाद की स्थिति में था, तो डिवाइस रीबूट के बाद पहले अनलॉक से पहले की स्थिति में वापस आ जाता है। यह उन उपकरणों से डिजिटल साक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है जो अफू के बाहर किसी भी स्थिति में समर्थित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यदि स्थितियां उपलब्ध थीं, तो iOS 18 वाले आईफोन उपकरणों ने अफू में वॉल्ट में चालू अन्य आईफोन उपकरणों के साथ संचार किया। उस संचार ने उपकरणों को रीबूट करने के लिए एक संकेत भेजा, जब डिवाइस सक्रिय होने या नेटवर्क से बाहर होने के बाद बहुत समय बीत चुका था। ये स्पष्ट नहीं है कि अन्य अफू उपकरणों पर सटीक सेटिंग्स क्या हैं जो रीबूट नहीं हुई। ध्यान दें कि iOS 18 डिवाइस हमारी प्रयोगशालाओं में प्रवेश करती हैं और इस तरह का संकेत भेजती हैं, इसका सबूत होना जरूरी नहीं है। प्रवेश करने वाली डिवाइस हमारा जारी किया गया कार्य आईफोन हो सकता है जो iOS 18 चला रहा हो, या एक परीक्षक द्वारा लाया गया व्यक्तिगत डिवाइस हो सकता है। इसलिए यहाँ परिकल्पना यह है कि कुछ प्रकार का संकेत या कमांड है जो iOS 18 प्लस डिवाइस iOS के विभिन्न संस्करणों को चलाने वाले रैंडम आईफोन्स को भेजने में सक्षम है, जो उन्हें रीबूट करने का कारण बनता है। अब यह विचार बहुत दूर की कौड़ी नहीं है, क्योंकि एप्पल ने वर्षों में जो फाइंड माई नेटवर्क बनाया है, वह एप्पल डिवाइस पर निर्भर करता है जो एक दूसरे को अनचाहे पिंग भेजने और उनका जवाब देने में सक्षम है। यही कारण है कि एप्पल टैग तब भी अपना स्थान दिखा सकते हैं जब उनका सीधा सेलुलर कनेक्शन न हो। वे पास के किसी आईफोन का फायदा उठा सकते हैं जिसमें सेलुलर या वाईफाई हो। अब अगर iOS 18 में कोई बग था जो इन फाइंड माई डिवाइस पिन को प्राप्त करने वाले फोन को रीबूट करता था, तो आपको लगता होगा कि जंगली में ऐसा होने के और भी मामले होंगे, खासकर तब जब इस तरह के बग का दुरुपयोग आईफोन उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सेवा अस्वीकार करने के लिए किया जा सकता है। मुझे लगता है कि एक मौका है कि एप्पल ने कुछ कोड डाला हो जो केवल उन फोन के लिए रीबूट को ट्रिगर करता है जो पिंग भेज रहा है, ये देखने के लिए GGPS का उपयोग करता है कि प्राप्त करने वाला फोन पुलिस स्टेशन में है और मूल रूप से जाता है। अरे बॉब, ऐसा लगता है कि आप जेल में हैं। बेहतर होगा कि आप खुद को रीबूट करें ताकि पुलिस आपको बात करने के लिए मजबूर न कर सके। उद्धरण चिन्ह। लेकिन यहाँ परिकल्पना के बारे में एक विवरण है जो मुझे उस स्पष्टीकरण पर भी संदेह करता है, और वह तथ्य ये है कि इन नए iOS उपकरणों ने कथित तौर पर अन्य iPhones के साथ संचार किया जो एक तथाकथित तिजोरी में थे। अब मुझे इस तिजोरी के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन जब तक इसके डिजाइन में कोई समस्या न हो या पुलिस इसका सही तरीके से उपयोग न कर रही हो, जैसे कि वे इसके दरवाजे को बहुत लंबे समय तक खुला रखते हैं, तब तक मैं उम्मीद करूंगा कि तिजोरी रेडियो सिग्नल को कम कर देगी, कम से कम सिग्नल ब्लॉकिंग बैग की तरह जो मैं अपनी वेबसाइट बास विन पर बेचता हूँ। ये बैग काफी पतले पदार्थ से बने होते हैं और वे किसी भी फोन या टैबलेट को वाईफाई, ब्लूटूथ और सेलुलर सिग्नल को पूरी तरह से ब्लॉक करने में सक्षम होते हैं जिसे मैं उनके अंदर रखता हूँ। और हाँ, आप इनमें से एक को सस्ते में भी बना सकते हैं, मूल रूप से डक्ट टेप परतों के बीच एल्यूमिनियम फॉयल की कुछ परतों के साथ डक्ट टेप वॉलेट बनाकर। कोई भी व्यक्ति जो धातु की इमारत में रहा है या यहाँ तक कि ऐसी इमारत में भी जहाँ इंसुलेशन में धातु है, वह जानता है कि रेडियो सिग्नल को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं होती है। तो फिर से यह मानते हुए कि कोई अक्षमता नहीं है और कुछ पुलिस विभागों को मिलने वाले लाखों कर डॉलर फैराडे बॉक्स में नहीं जा रहे हैं जो बेस विन पर मेरे द्वारा बेचे जाने वाले सस्ते वाले से भी बदतर हैं, मुझे लगता है कि यहां एक और स्पष्टीकरण होना चाहिए। मेरी अंतरात्मा मुझे बताती है कि एप्पल ने अपने डिवाइस को अधिक सुरक्षित रखने या अपने सेलुलर सिग्नल को फिर से शुरू करने का प्रयास करने के लिए किसी प्रकार की निगरानी सेवा बनाई होगी, और अंतिम परिणाम ये होता है कि फोन रीबूट हो जाता है और फिर इसे BFU मोड में डाल दिया जाता है। अब जाहिर है, इस तरह की निगरानी सेवा कानून प्रवर्तन को विफल करने के लिए उपयोगी होगी, लेकिन ये किसी को भी रोक देगी जो आपका फोन ले लेता है और इसे एक नियंत्रित वातावरण में ले जाता है जहां आप डिवाइस को अनधिकृत पहुंच से दूर से मिटाने के लिए कोई आदेश नहीं भेज सकते। इसलिए अगर यह पता चलता है कि आईफोन्स पर पृष्ठभूमि में कोई प्रोग्राम चल रहा है जैसा कि मैंने अभी वर्णित किया है, तो कानून प्रवर्तन के लिए ये दावा करने के लिए एक बहुत ही कठिन कानूनी मामला होगा कि एप्पल ने कानून प्रवर्तन में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोग्राम बनाया है। नहीं, इसे एक वैध सुरक्षा सुविधा के रूप में देखा जा सकता है। इस बात की भी संभावना है कि विचाराधीन डिवाइस में वास्तव में कोई बग हो जिसके कारण उन्हें रीबूट करना पड़ा, क्योंकि कई आईफोन 16 उपयोगकर्ता अक्टूबर की शुरुआत में रिपोर्ट कर रहे थे कि उन्हें अपने नए डिवाइस में रैंडम फ्रीजिंग और रीस्टार्ट की समस्या हो रही थी, और एप्पल ने iOS 18.1 में इसके लिए एक फिक्स जारी किया था। इसलिए अगर ऐसा है तो यह उन दुर्लभ उदाहरणों में से एक होगा जहां किसी ने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट न करके वास्तव में अपनी जान बचाई। अगर आपके पास इस नए बढ़िया सुरक्षा बग या फीचर के बारे में कोई परिकल्पना है जो आईफोन्स में है, तो मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं। एल्गोरिदम को हैक करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना दिन शानदार तरीके से बिताएं।